Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yasmat param na paramasti kinchit. यस्मान्नाण्योरजायोऽस्ति कर्षि वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ये प्रसंग चला श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का नौवां श्लोक, इसमें क्या विचार किया जा रहा है? संतों के अनुभव का अनुभव का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। पहले श्लोक में आपको बताया वेदा में पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। अब इसे प्रश्न करते कस्मात् न विद्यते अयनाय अन्य मार्ग। आपने कहा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसके बिना? ज्ञान के बिना। यानी बस अयनाय मोक्षाय न अन्य पंथा विद्यते है। पंथा माने मार्ग, यानी बस न कर्म मार्ग, न उपासना मार्ग, सांख्य मार्ग, न योग मार्ग, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। और ज्ञान होगा कैसे? वेदांत वाक्यों के श्रवण से, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य आत्माने खलु दृष्टे श्रुते मते इदं सर्वं विज्ञातं भवते ही ज्ञान। और ज्ञान होगा कैसे? श्रवण से। श्रवण कब करोगे? सत्संग में। श्रवण तो सत्संग में होगा ना। इसीलिए कस्मात् पुनर एवं ये शंका किया, जीव उसी को जान करके मृत्यु को पार कर जाता है, अनिवार्य इसमें क्या है? यानी उसको जान करके मृत्यु से पार जाता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते जस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित्, जिससे पर कुछ भी नहीं है, न अपरम कुछ भी नहीं है, न पर कुछ है न अपर कुछ भी है, न अनियान जिससे छोटा भी कोई है और न कोई बड़ा है। तो कैसा? का वृक्ष स्तब्ध, जैसे एक वृक्ष माने यहां ठूट समझ लेना, वृक्ष के ठूट होते ना, ऐसे वृक्ष लोगे तो हवा से चलता फिरता गिरता ऐसा बातें आ जाती है। तो वृक्ष कैसा है? ऐसा जिसका कोई पत्तियां नहीं हो, डने टहनिया नहीं हो, ऐसे वृक्ष के समान जो स्तब्ध रहे, स्थिर रहे, अचल रहे, अटल रहे, यानी बात दिव्य तिष्ठति एक। दिव्य माने ज्योतनात्मक, स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति रूपी आपने स्वरूप में जो स्थित रहे। एक कौन है? का युवा एक है कि अनेक है? तो का एक है। तेन इदम पूर्णम पुरुषना, तेन पुरुषना इदम सर्वम पूर्णम, तेना पुरुषेणा उस एक जो पुरुष स्तब्ध इव तिष्ठति जो है उसके द्वारा इस सारे संसार कैसा है तेने इदम इदम माने यह माने जगत पूर्णम व्याप्तम पूर्ण का अर्थ हुआ पूरा पूरा माने भरा हुआ पूर्ण कलश घट घटा पूर्णा अन्य बात घड़ा घड़ा जो है ना पानी से पूर्ण होता है ना भरा हुआ घड़ा को पूर्ण कहते पूर्ण कुंभम पूर्ण कुंभ कहता है कि नहीं ऐसे समझना उस पुरुष से जगत पूर्ण है भरा पड़ा है यहाँ पूर्ण का अर्थ है व्याप्त हाँ व्याप्त है जैसे आभूषण में सोना व्याप्त है जैसे मिट्टी घड़ा में मिट्टी व्याप्त है जैसे बर्फ में पानी व्याप्त है जैसे नमक में खारापन व्याप्त है जैसे गन्ना में शक्कर व्याप्त है ऐसे परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है द्योतन माने प्रकाश द्योतन कहते प्रकाश वो आपने स्वयं प्रकाश में स्थित है सकृत विभातम द्योतन माने सकृत माने एक ही बार प्रकाशित होता है मतलब स्वयं प्रकाश को सकृत कहते जैसे दीपक को बार बार जलाते हो ना एक बार प्रकाशित नहीं होता जब बुझ गया तब जलाओ जब बुझ गया ऐसा नहीं है जैसे स्फटिक मणि तो सकृत प्रकाश माने जैसे स्फटिक मणि नित्य प्रकाश ही रहता है सफेद रहता है कि नहीं हो ऐसी आत्मा भी कैसा है स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति स्वस्वरूप में स्थित रहता है यस्मात् परम पुरुषात् परम उत्कृष्टम अपरम अन्य नास्ति देखो पर और अपर शब्द है पर किसको कहते अपर किसको कहते परम ये है पर दो प्रकार के है देशकृत कालकृत समझे नहीं देश कृत पर अस्मात देश अयम पर इससे पर है नदी के उस पर है उस पर उस पर नहीं कालकृत पर है ज्येष्ठ कनिष्ठ आपका बड़ा भाई है छोटा भाई है अन्य बात एक ज्येष्ठ होता है बड़ा को तो कालकृत पर है पर माने बड़ा है कालकृत है और कालकृत कनिष्ठ है ये छोटा भाई है ये बड़ा भाई है तो कालकृत ज्येष्ठता कनिष्ठता है अरे हमारे न्याय दर्शन बतलाते पर क्या अपर क्या पर का लक्षण अपर का लक्षण हाँ तो कालकृत माने अधिक देश वृत्तित्वम परत्वम न्यून देश वृत्तित्वम अपरत्वम अधिक देश में जो रहे उसका नाम पर अधिक देश में रहता है और न्यून देश में रहे अपर है तो पर अपर की परिभाषा है परंतु ब्रह्म से परे ब्रह्म ही सबसे परे है पर है तो ये बात आपको पहले भी बतलाया था कि भाई इंद्रिय भी पर ही अर्थ अर्थ भी परम मन मनसस्त पराबुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्ना परा किंची सा कष्ठा सा परागति यानी वही पर का परिभाषा वहां तक गया है तो देशकृत परत्व कालकृत परत्व है बात परत्व देशकृत है और कालकृत है और अपरत्व भी देशकृत है कल तो न्यून थोड़ा देश में रहने वाला का नाम अपरत्व और अधिक देश में रहने वाला का नाम परत्व है बात तो परत्व अपरत्व का परिभाषा इसमें ऐसा किया गया है तो ब्रह्म से परे कोई नहीं है इसीलिए अभी उसमें देखो हाँ उपनिषद में आया ना इसमें आत्मा अणुर ब्रीहिर्वा जवादवा सामकादवा सामकत अंडुलादवा इसमें आत्मा अंतर हृदय जायान पृथ्व्या जायान अंतरिक्षा जाया दीव जा दिव्य सर्व्य लोकेभ्य तो जायान इतान हमारा आत्मा तो सबसे बड़ा है कितना बड़ा है जायान पृथ्व्या पृथ्वी से बड़ा है अंतरिक्ष से बड़ा है दीवलोक से बड़ा है आखिर में कहा इव्य सर्वभ्य लोकेभ्य सब लोगों से बड़ा है तो तुम्हारा आत्मा इतना बड़ा है तो उसमें कैसे आएगा छोटा में तो इस समय आत्मा अणु बिहेरवा नहीं बिहेरवा जवादवा सामकादवा सामका तंडुलादवा मेरे आत्मा कितना छोटा है कब्री से भी छोटा है ब्रीही समझ में ना धान को ब्रीही कहते धान हटा ना धान मैं कहता धान आप कहते जाओ धान देखा नहीं कभी कैसा है धान अंडा के जैसे चावल के जैसे महाराष्ट्र में भात कहते महाराष्ट्र में भात कहते चावल को तंडुल कहते हैं धान अलग चीज है तंडुल अलग चीज है भात अलग चीज है भात किस को कहते भविष्य बैठते भात हमने कहा क्या कर रहे हो भात बना रहा हूं तो भात फिर बनाना क्या है भात पका रहा है भात पका रहा है कि चावल पका रहा है तो भात पका रहा है क्या बोल देता है उसका नाम भविष्य वृत्ति भविष्य में भात बनेगा भात पका रहा हूं मतलब चावल पका रहा है नहीं बात बहुत से आदमी भात बना रहा हूं बोल देता है रोटी बना रहा हूं तो ऐसा में आत्मा अणियान मेरा मेरी जो आत्मा है ना अणियान है अणी अणुआन अणु समझते हैं ना अणु कहते हैं परमाणु का एक हिस्सा अणो रणियान महातो महियान ऐसा में आत्मा अंतर हृदय अणियान किससे अणियान छोटा है ब्रीहिर्वा जवादवा सामकादवा सामका तंडुलादवा सबसे बड़ा हुआ सामा का सामा चावल का सामा धान होता है ना उससे निकालने वाला जो चावल है उसको सामा तंडुल कहते हैं तंडुला तो मतलब क्या है उसी बात को यहां बतला रहे अणु से भी अणु है और महान से भी महान आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है याद रखना कहाँ रह जाए अणुरणिया इस समय आत्मांतर ही रहे मेरा हृदय के भीतर ये आत्मा रहता है छोटा से ही छोटा और बड़ा से भी बड़ा आनी बात तो देखो यस्मात् परम पुरुषात् परम उत्कृष्टम अपरम अन्य नास्ति जिससे उत्कृष्ट माने बड़ा कोई नहीं है यस्मात् न अणिय जिसमें सूक्ष्म भी कोई नहीं है अणुतर न जाया न अणुतर है देखो अणु अणुतर अणुतम तीन वस्तु है याद रखना अणु अणुतर अणुतम सस्व सूक्ष्म क्या है जैसे आपका आपके आपके इंग्लिश में भी है कि नहीं गुड बेटर बेस्ट और ये तो हुआ अच्छा के लिए है बुरा के लिए बेड वो समझ लेना वहां भी तीन प्रत्यय होता है यहां भी तीन प्रत्यय होता है अरे इसको कहते प्रत्यय अणु अणुतर अणुतम ज्येष्ठ ज्येष्ठतर ज्येष्ठतम महान महत्तर महत्तम ऐसा होता है वृक्षैव स्तब्धो निश्चलो देवी द्योतनात्मनि स्वे महिम्नि तिष्ठति एको अद्वितीयः परमात्मा तेन अद्वितीयेन परमात्मना इदं सर्वं पूर्णं निरन्तर्येण व्याप्तं पुरुषेण पूर्णेन देवो वृक्षैव स्तब्धः। स्तब्ध का माने देखो, स्तब्ध कई किस्म से होते व्यवहार में। स्तब्ध हो गया, बोल नहीं पा रहा है, बोलता नहीं ना। सेंसलेस हो गया, कहते कि नहीं, किसको कहते हैं, कमा में चला गया, स्तब्ध हो गया, मूर्छित हो गया, कहते कि नहीं। तो मूर्छित व्यक्ति को बोल सकता है क्या? बोलता है? तो मूर्छित हो गया, यानी बात चेतना रहित हो गया, तो इसको स्तब्ध, बस ऐसे बैठा रहता है, कोई घूम सुम बैठा रहता है ना, उसको भी स्तब्ध कहते हैं, याद रखना। नहीं, चेतन तो रहता है, परंतु बोल नहीं पाते ना, मूर्छा अवस्था में बोल नहीं सकते। अगर बोल सकता तो मूर्छित क्यों कहेगा? बोलेगा ना। चेतनहीन का मतलब ये नहीं है, जो चेतनहीन हो मुर्दा को बोलता है। चेतन मतलब जो हिलता झुलता नहीं, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, भीतर सब कुछ होते हुए भी इसका प्रकट नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। मूर्छा, मूर्छा अवस्था में आप मारे, आपको याद है, देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर आप बोल नहीं सकते हो। क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए तो वो आला लगा करके देखता है कि नहीं डॉक्टर लोग, और ऐसे नमाज पकड़ता है, नहीं सकता। वो तो हमको अनुभव है, मैं मर गया था पर देखा रहा, ऐसा आदमी चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, सब सब धोती पहना हुआ है, सब देखा, बाड़ी नहीं है, ऐसे देखता रहा। मुझे अभी तक उसी ने नहीं याद है। देखो सब याद रहता है, सब सब मालूम पड़ता है। जब इंद्रिया सब अपने भीतर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं ना सब, तब भी सूक्ष्म तो विषयता आपको रहेगा, पर बोलने से तो बाह्य इंद्रिय तो है नहीं। बाह्य इंद्रिया तो सब लय हो गए ना अपने वृत्ति के साथ कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर जब तक कारण शरीर में लय नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान रहता है। समाधि कहो, मूर्छा कहो, सुषुप्ति कहो, तेरा एक ही अवस्था है। जो देखो स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ कर दिया निश्चल। देखिए दीवी का अर्थ कर दिया द्योतनात्मनी, द्योतनात्मा ना प्रकाशात्मक। प्रकाशात्मक क्या चीज है? स्वयं महिमनी, आपने महिमा में तिष्ठति एक अद्वितीय। कौन रहता है? एक अद्वितीय परमात्मा, सौ परमात्मा तीन अद्वितीय परमात्मा न इदम सर्वम पूर्ण। उस अद्वितीय परमात्मा से ये इदम, देखो इदम शब्द है, इदम उष्मद अथवा प्रत्येक अवसर है विषय विषय न तमा प्रकाश विरुद्ध स्वभाव आया कि नहीं? ये उष्मद शब्द का इदम, इदम शब्द है, इदम संपूर्ण जगत व्याप्त। इदम माने यह माने प्रपंच, जड़ चेतन स्थावर जंगम सबके सब कैसे आ गए थे? पूर्ण है, पूर्ण का माने व्याप्त है, सब में एक पर आत्मा ही आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे सुवर्ण में है ना, सुवर्ण जो है किस में व्याप्त है? आभूषण में, बोलो ना, सुवर्ण आभूषण में व्यापता है, नहीं बाप? बर्फ में कौन व्यापता है? और नमक में कौन व्यापता है? ऐसी आत्मा कहाँ व्यापता है? लिया ये भूल गया इजम में, इजम माने आयम। इसमें दो शब्द याद रखना, तीसरा कोई शब्द नहीं है, एक अहम और एक इजम, तीसरा शब्द ही नहीं है याद रखना। और इजम और अहम, अच्छा इजम के भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, यह मिथ्या है क्या? यह अहम में भास रहा है, यह कहाँ भास रहा है? अहम में भास रहा है। तो अहम हुआ दृष्टा और इजम हुआ दृश्य, आनी बात। तो दृश्य जो है किस रूप में भास रहा है? जैसे रस्सी में सर्प भासता है, जैसे मरुभूमि में जल भासता है, जैसे आकाश में नीलिमा भासता है, आनी बात, जैसे सुक्ति में चांदी भासता है, ऐसे ही किस में? अहम में। तो इसीलिए ब्रह्म सूत्र में पहली अध्याय भाष्य में बतला दिया, उष्मा दस्मा प्रत्यय गोसर विषय विषय न, एक विषय है, एक विषय है, विषय माने ज्ञान और विषय यानी दृश्य।